ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले आज नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र, शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद थे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कॉल नेहमर और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रिया ने बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और कचरा प्रबंधन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक, उसके पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट नीति और सागर योजना के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत समावेशी विकास और सतत विकास के लिए ब्रिक्स के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि देश में बड़े बंदरगाहों के विकास का काम पूरा हो चुका है। श्री सोनोवाल आज केरल में तिरुवनंतपुरम के विंजयम बंदरगाह में एक लाइट हाउस के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। ये कार्यक्रम राज्य में लाइट हाउस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पोत परिवहन के क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की थी, उस विरासत को उपलब्ध संसाधनों के जरिए हमें आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपने पूरक आरोप पत्र में श्री केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी के आरोपी नंबर 38 के रूप में सूचीबद्ध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और एनटीए के हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन किया। इस बीच नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के एक समूह ने आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में मुलाकात की। छात्रों ने परीक्षा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने अनुभव साझा किये। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के मध्य भाग और तटीय कर्नाटक में सोमवार तक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में भी अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और बिहार में भी आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। विम्बल्डन टेनिस में कजाकिस्तान की एलिना रबकीना आशम महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेचिकोवा के साथ खेलेंगी। विम्बल्डन टेनिस में कजाकिस्तान की इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।